ओम शांति। अभी अभी आप हम सभी ने बाबा की बहुत अच्छी मुरली सुनी है और मैं समझती हूँ कि हम सभी ब्राह्मण परिवार कितना लक्की परिवार है जिनका ध्यान कौन रखता है, जिनका ध्यान कौन रखता है, स्वयं भगवान रखता है। लोग भगवान का ध्यान करते हैं और यहाँ क्या है, भगवान हमारा ध्यान रखते हैं। मैं क्यों कहती हूँ ध्यान रखते हैं कि आप सोचिए, आपके समय का सदुपयोग सफल कितना रखने का ध्यान हो रहा है। अगर आप अभी उठ जाते, आपका उठने का टाइम था, अगर उठ जाते तो लाइन में लगे रहते है ना, नाश्ते के लिए। अब ये भगवान ने सोचा कि नहीं, ये समय भी इनका क्या कर दिया जाए, सफल कर दिया जाए। तो आप सोचिए कि स्वयं बाबा भी कितना हमारे इस संगम युग के समय का ध्यान रखते हैं। और मैं यही सोच रही थी, ध्यान में आ रहा था कि हमारे यज्ञ की कहो, हमारा विश्वविद्यालय कहो, या लोगों के नजर में इसको संस्था कहो, चलो तो भी ये कितनी बड़ी बात है कि हम सभी को, आप सभी को भी घर से बुला बुला करके बाबा हमको तैयार कर रहे हैं, है ना, एक तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये भट्टी कहा जाता है, परंतु मुझे तो लगता है कि आत्मा को, सभी आत्माओं को अच्छी तरह से जीने की ये ट्रेनिंग मिलती है ना। ये भी एक प्रकार की ट्रेनिंग है कि हम कैसे घर गृहस्थ में रहते हुए भी सदा खुश, सदा मौज में, सदा उमंग उत्साह में रहते रहते संपन्न बन जाए, संपूर्ण बन जाए, इसकी ट्रेनिंग बाबा हमें दे रहे हैं। मुझे हमेशा लगता है कि ये संगम युग एक ऐसा युग है, जो अभी अभी हम लोगों ने गीत भी सुना कि हमारा तकदीर बन रहा है, भाग्य बनाने का ये समय है, तकदीर बनाने का ये समय है। क्यों तकदीर बन जाती है? वैसे दुनिया में भी कहा तो जाता है कि जो जैसा कर्म करता है वैसा उसका भाग्य बन जाता है, वो तो बनता है। परंतु हमें ब्राह्मण कुलभूषण को, ब्राह्मण परिवार को बाबा ने इस कर्म और फल की फिलॉसफी में जो एक्सेप्शंस है, जो अपवाद है, उसका लाभ दिया है। दुनिया में तो जो कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, परंतु यहां भी, यहां वो कायदा नहीं है, वहां है, यहां है आपको फ्रीडम। यहां आपको ये फ्रीडम है कि अभी भाग्य बनाने का, तकदीर बनाने का ये समय है, जो जितना चाहे उतनी तकदीर बना सकता है। खैर, लाइफ टाइम तो वही है ना, दिन के घंटे तो उतने ही हैं, आपकी शारीरिक शक्ति भी वही लिमिटेड है, परंतु जो अनलिमिटेड है वो क्या है, आपकी मन की शक्ति। और इसीलिए अभी हम सबको चॉइस है, फ्रीडम है कि आप ऐसा भी कर्म कर सकते हैं जिसका एक का एक गुना फल मिलेगा, वो तो अवश्य मिलेगा, कहां भी नहीं जाएगा। परंतु आप वो भी कर्म कर सकते हैं जिसका आपको एक का 10 गुना मिल सकता है, 100 गुना मिल सकता है, और एक्सट्रीम क्या है, एक का पदम गुना। पदम तो आपको पता होगा, गिनती में है ना, 100, 1000, 10000, 1,00,000, 10,00,000 करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब करके लास्ट में पदम आता है, समझा। एक रुपया, समझने के लिए, अगर आपने 1 रुपया यज्ञ में किया, अगर आपकी मन की स्थिति इतनी ऊंची है, तो उसको बदली में आपको कितना मिल सकता है, एक पदम। इतनी पॉसिबिलिटी है, इतना संभव है, अगर हमारी मन की स्थिति इतनी ऊंची बन जाए तो। और ये हमारा जो पुरुषार्थ है संगम योग का, हमारी जो पढ़ाई है वो हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली हर आत्मा इस बात के पुरुषार्थ में है कि कैसे मैं मेरे कर्म के फल को मल्टीप्लाई करता रहूं, है ना। कर्म तो हम सभी करते हैं, संगम युग के अंदर हम सभी कर्म करते हैं, पर धीरे धीरे हम अपनी स्थिति को ऐसी बनाएं जो एक को अनेक गुना मल्टीप्लाई करते रहे, तो भविष्य में जो प्राप्ति की बात है। आज तो बहुत अच्छी बात बाबा ने मूली में बताई कि तुम स्वर्ग में जाओगे, सोने के महलों में रहोगे और सोने के महलों में हीरा जड़ित होगा। होगा, जरूर होगा, पर सोचने की ये बात है कि मेरा होगा, स्वर्ग में तो होगा पर मेरा महल कैसा होगा, है ना। वो हर एक को व्यक्तिगत रूप से सोचना होगा, मैंने इतनी कमाई किया, क्योंकि भले संगम युग है, तकदीर बनाने का समय है, स्वयं बाबा हमारे साथ है, तो भी हिसाब किताब क्लियर है। जो करेगा वो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, हिसाब किताब तो है। तो हमें सोचने की बात है कि हमने इतनी कमाई की है और कमाई करने के लिए जो मुख्य बात है, जैसे पहले ही कहा कि कर्म हम सब करते हैं पर मन की स्थिति क्या है, तो कर्म का कितना गुना फल मिलेगा उसका आधार है कि हम जो कर्म करते हैं उससे मुझे मेरी स्थिति में कितना लाभ होता है, कितनी आत्माओं को उससे लाभ होता है और वो लाभ कितने समय तक चलता है। मुझे याद आता है एक का अनेक गुना फल कैसे मिलता होगा, उसकी एक अनुभव मुझे याद आता है कि एक बार मधुबन से सेवा करके एक भाई सेंटर में आया, और जब सेंटर में मिलने के लिए आया तो भी बहुत खुश, बहुत अच्छी स्थिति। तो कहता है इस बार तो मैं निहाल हो गया मधुबन जा करके, मेरा भाग्य जग गया, बहुत खुश बहुत खुश। तो मैंने सोचा पता नहीं इसको क्या मिल गया। तो कहता है मेरा तो भाग्य खुल गया। मैं कहा क्या हुआ भाई, बताओ तो सही, तुम्हारा भाग्य कैसे खुल गया इतना ज्यादा। तो उसने अपना अनुभव सुनाया कि बहन इस बार ऐसा हुआ, वो जो सेवा में आए थे वो किचन की सेवा में आए थे, पिरोसने की सेवा थी, इसलिए वो जो किचन के बड़े बड़े पतेले ट्रांसपोर्ट करते हैं ना वो गाड़ी में, उसमें उसकी ड्यूटी थी। तो कहता है मैं वो धकेल रहा था गाड़ी, और उस समय हमारी दादी प्रकाशमणि उस समय तो किचन में भी चक्कर लगाते थे। तो कहते हैं कि वो आई, जैसे वहां बाहर गाड़ी से उतरते थे दादी और किचन में चक्कर लगाते थे, तो वो तो ऐसे धकेल रहा था, दादी तो पीछे से आई, तो दादी ने जरा सा खाली उसके कंधे पर हाथ करके भाई जरा बाजू पे मेरे को जाने दो। बस उसने देखा कि पीछे कौन, दादी जी को देख करके अतीन्द्रिय सुख में खो गया। क्या किया, खाली हाथ से स्पर्श किया कि जरा बाजू पे। कहता है क्या मेरा भाग्य, स्वयं दादी ने मेरे को कंधे पे हाथ लगा दिया, क्या भाग्य। और वो भाग्य तब तक नहीं था, सेंटर में आया तब तक, शायद आज भी याद करता होगा उस क्षणों को याद करके, क्या मेरा भाग्य। अब सोचिए अगर हम कहे कि बाजू पे हटो तो क्या होगा, हम कहे तो क्या होगा, क्या जवाब मिलेगा। अब सोचिए क्या कारण है। इसको कहते एक क्षण और जरा सा स्पर्श, वो भी स्पर्श करने के भाव से नहीं, बाजू पे हटाने के भाव से, उसका फल वो आत्मा को इतने दिनों दिन तक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव। और वो अतीन्द्रिय सुख के अनुभव में उसने कितने अच्छे श्रेष्ठ कर्म कर लिए होंगे, है ना, और कितना श्रेष्ठ भाग्य पाया होगा, उन सब का शेयर दादी के खाते में जमा होगा, है ना। ये तो एक छोटी सी बात है पर इतना क्यों हम सब दादी को इतना याद करते हैं, क्यों सबको इतना प्यार आता है, क्योंकि आंतरिक जो स्थिति आत्मा की इतनी श्रेष्ठ, वो जब जरा सा कर्म करती है, सबको ऐसा ऐसा हाथ हिलाती है तो सबके दिल में एक धड़कन सी हो जाती, क्या मुझे प्यार मिल गया। आप सबको याद होगा कि दादी जी जब यहाँ आते थे तो ऐसा ऐसा करके सबको करते थे, तो हाथ ऐसा हिलता था, है ना। तो एक वीआईपी आया था यहाँ पर, बहुत बड़ा कथाकार था, तो मुझे कहते पता है इसका अर्थ क्या है, दादी जो ऐसा कर रही है उसका अर्थ क्या है। मुझे बताइए भाई क्या अर्थ है, आपको ही ज्यादा पता होगा। कहते जब दादी का हाथ ऐसा होता है तो सारा ब्रह्मांड हिलता है, सारे ब्रह्मांड में वाइब्रेशन जाते हैं। मतलब कमाल की बात है, क्या क्या व्यक्ति क्या महसूस करता है। आप सोचिए कि दादी को तो मन में ऐसा नहीं था, पर सामने बैठा हुआ ऐसा महसूस करता है कि क्या सारा ब्रह्मांड हिलता है। मैंने कहा कमाल है, हमको तो कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ, और आपको बाहर से आके इतना अच्छा अनुभव हो रहा है। तो ये है मन की स्थिति। बाबा ने हमें एक्सट्रीम बता दिया, एक का पदम गुणा प्राप्ति क्या होती है। अब हमें अपने आप में देखना है कि हमें कैसे हमारे कर्म की कीमत को, वैल्यू ऑफ एक्शंस, कर्म की कीमत को कितना बढ़ाना है और कैसे बढ़ाना है। उसके लिए ब्राह्मण जीवन में हमें चार बातें मिली हैं। आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए तो ब्राह्मण बन करके जो चार मुख्य नियम हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैं वो स्थूल चार नियम की बात नहीं करती हूँ, ब्राह्मण बनने के बाद की बात है। एक तो कायम है ही पवित्रता का, किसी भी कर्म की वैल्यू का आधार हमारी निजी संपूर्ण प्योरिटी के ऊपर है। जितना व्यक्ति प्योर, पवित्र, निर्विकारी, उतना उसके बैठे बैठे भी उसके हर कर्म की कीमत ज्यादा होती है। जिसके लिए बाबा कहते हैं आप अपने आप में संपूर्ण पवित्र बन जाओ, वही सबसे बड़ी सेवा है, वही सबसे बड़ी सेवा है। और उसके लिए जो प्रयत्न की बात है, पुरुषार्थ की बात है, उसमें सबसे मुख्य पहचान, ब्राह्मण की पहचान जिसको हम कहते हैं ना, हम कैसे कहते हैं ये पक्का ब्राह्मण बन गया। पहले व्यक्ति ज्ञान में आता है, धीरे धीरे संपर्क में आता है, फिर कब कहते हैं कि ब्राह्मण बन गया, पहली बात जब पवित्र बन जाता है ना, जब अपना कम से कम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना शुरू कर देता है तो हम कहते हैं अभी ब्राह्मण बनने लगा, बनने लगा। दूसरी बात अमृत वेला, ब्राह्मण की पहचान कौन सी है, उनको ये शब्द पता चल जाएगा कि अमृत वेला क्या है ना। आत्मा को शक्ति संपन्न बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय जो है वो अमृत वेला का है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का एक ही मुख्य पुरुषार्थ है, सार रूप एक ही पुरुषार्थ है कि हम जन्मों जन्म से और इस जन्म में कई वर्षों से केवल देह भान के वश चलने का हमें अभ्यास है। देह और देह के संबंध और देह के पदार्थों में ही रहना, उसके बारे में सोचना वो स्वभाव है। अब पुरुषार्थ क्या करना है, मैं आत्मा हूं। अब मैं आत्मा हूं ये कहना सरल है, परंतु अनुभव में आना पुरुषार्थ की बात है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुरुषार्थ सहज है पर करना पड़ेगा, ये सोचना होगा कि मैं आत्मा हूं, इस शरीर में विराजमान मैं आत्मा हूं। परंतु ये विचार करने का हमको समय नहीं है, अथवा सारे दिन विचार करने को अगर बैठते हो, आप योग में बैठते हो तो अनेक बातें आती है, कोई बुलाएगा, कोई फोन आएगा, कोई आपके घर में दूध वाला आ जाएगा, पानी आ जाएगा, भोजन बनाना होगा, बच्चे होंगे, आएंगे जाएंगे, सारा दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। और वैसे तो उसको मुश्किल हमें समेटना होता है, हर जगह से समेट के अपने आप को समझो कि मैं आत्मा हूं। उसके लिए शांति चाहिए, तो वो शांति कब मिलती है, केवल अमृत वेला, अभ्यास के लिए। ये अभ्यास की बात है, इसलिए अमृत वेला जब आप उठते हो तो सारी दुनिया सोई पड़ी है, कोई दूध वाला आएगा नहीं अमृत वेला, है ना, कोई पानी आएगा नहीं अमृत वेला, कोई बच्चे रोएंगे नहीं, बुलाएंगे नहीं, चाय वगैरह बनाना नहीं, कुछ भी नहीं, ऑफिस जाना नहीं, कुछ नहीं है, अमृत वेला फ्री हो, इसलिए शांति से बैठ करके ये चिंतन करो, मैं आत्मा हूं। और बाबा भी उसी समय हमारे पास आते हैं तो बाबा को हम सहज रूप से महसूस कर सकते हैं कि बाबा मेरे साथ है। बाबा होता है पर हम उनके पर ध्यान नहीं रखते। बाबा तो कहते मैं सारा दिन होता हूं, परंतु हमें उसकी तरफ देखने का थोड़ा समय ही नहीं होता है। बाबा को हंसी आती होगी पर वास्तव में समय नहीं होता है। पर सुबह सुबह में जब हम फ्री है, शांति से चिंतन कर रहे हैं, तो बाबा की प्रेजेंस की महसूसता कर सकते हैं। इसलिए अमृत वेला शुरू से लेकर के हमारी संस्कृति में भक्ति मार्ग से लेकर के बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और इतना पक्का करना चाहिए इस बात को, इतना पक्का करना चाहिए कि इस बात के लिए, इस पुरुषार्थ के लिए कभी भी माया ना आवे, कभी माया ना आवे, माया भी मदद कर ले। एक बहुत अच्छी सी छोटी सी कहानी है कि एक बार एक संत ऐसे पुरुषार्थ में बहुत पक्का था, अमृत वेला सुबह, क्योंकि भक्ति में भी सुबह में ही भगवान को याद करते हैं, तो अपने आप में बहुत पक्का था। एक दिन क्या हो गया कि बीमार हो गया तो सुबह में नहीं उठ सका, और जब उठा तो देरी हो गया तो बहुत पश्चाताप करने लगा कि अरे मैं आज उठा नहीं, ऐसा तो चल ही नहीं सकता है, अब जितना मैं सुबह बैठता 4 घंटा बैठ के मुझे जरूर ध्यान करना है, तो 4 घंटा बराबर योग में बैठ गया। दूसरे दिन सुबह में अमृत वेला होते ही इसको ऐसे हुआ कि कोई व्यक्ति मुझे जगाने आया है, उसने कहा जागो, तो उसने देखा कि ये तो कौन है, आप कौन हो, तो कहता है कि मैं तो माया हूं। तो माया, माया तो सुला देती है, उठाती थोड़ी ही है, तुम कौन हो, कहते मैं माया हूं, तो तुम कैसे मेरे को उठाने आ गई, कहते मैं उठाने ही आ गई ना, क्योंकि अगर अभी नहीं उठाऊंगी तो तुम फिर 4 घंटा पुरुषार्थ करोगे, इसे अभी उठ जाओ, वो अच्छी बात है। समझा, तो ऐसा पक्का पुरुषार्थ करो जो माया भी नमस्कार करे, माया भी हमारी सहयोगी बन जावे। तो पहली बात है अमृत वेला, है ना। दूसरी बात, नियमित मुरली क्लास, क्योंकि पुरुषार्थ का मुख्य आधार ही हमारा मुरली है। मुझे ऐसा लगता है कि मुरली के लिए जीवन में कोई बहाना कभी कोई ना निकाले। बाबा तो हमें मुरली में कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत कितनी भी खराब हो, कितनी भी खराब हो, भले क्लास में आकर के तुम लेटे लेटे मुरली सुनो, परंतु क्लास कभी मिस नहीं करो, नेवर। आज कितनी अच्छी बात बाबा ने सुनाई कि मुरली ट्रैवल ज्यादा करती है या आप ट्रैवल करते हो, है ना। कहीं सोचते हैं हमें कितना दूर से आना पड़ता है, अरे भगवान कितना दूर से आता है, मुरली कितना दूर से आती है ना। तो व्यवस्था करो, जैसे बाबा ने अभी हमें अव्यक्त मुरली में भी कहा है, कारण नहीं परंतु निवारण करो, हर कारण का निवारण, व्यवस्था करो। अगर आप दूर हो तो भी व्यवस्था करो, पब्लिक व्हीकल में आओ, पब्लिक व्हीकल नहीं अच्छा लगता है, टाइम जाता है, तो अपना व्हीकल लो, भले कपड़े कम हो, आप भले अपना मकान बनाना है तो पीछे बनाना, पर ऐसा व्हीकल जरूर लेना है जिससे मेरा क्लास कभी मिस ना होवे, है ना। तो दूसरी बात है कि नियमित क्लास। तीसरी बात, जैसे कहा कि हमारी संपूर्ण पवित्रता की धारणा, वो केवल ब्रह्मचर्य व्रत की बात नहीं है, परंतु आज बाबा ने कैसे धीरे 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 मूल्य में कहा, क्रोध भी कोई कम नहीं, मोह भी कोई कम नहीं, हर विकार आत्मा की ताकत को कम करता है। इसीलिए पवित्रता की बात तो है, और बाबा की इस सीजन की हर मुरली के अंदर जो विशेष अटेंशन बाबा ने दिलवाया है, व्यर्थ को खत्म करना। व्यर्थ भी अपवित्रता है, तो संपूर्ण पवित्रता की धारणा। और चौथी बात यज्ञ सहयोगी, वो भी आपको बहुत अच्छी तरह क्लास मिला है। परंतु मैं समझती हूं जब तक मेरे को दिल में यह ना होवे कि यज्ञ मेरा है और यज्ञ सहयोग मुझे नियमित रूप से करना है, अनियमित करना भक्ति मार्ग है, अनियमित रूप से यज्ञ सहयोग करना उसको मैं समझती हूं भक्ति, जो जब मन में आए तब किया। जैसे मंदिरों में जाते हैं ना, मंदिरों में तो कब कब जाते हैं, जब मंदिर में गए तो कर दिया, जब मन में आया तो कर दिया, जब किसी की बर्थडे हो गई तो कर दिया, जब कोई प्रसंग आया तो कर दिया, वो अलग बात है, वो भक्ति की बात है। ज्ञान और ज्ञान में ब्राह्मण जीवन और हम यज्ञ सहयोगी और यज्ञ स्नेही और बाबा के बच्चे है ना, उसकी निशानी ये है कि जो नियमित रूप से यज्ञ सहयोग करेगा। हम ऐसा समझते हैं, बाबा हमेशा ऐसा कहते थे, दादी जी हमेशा ऐसे सिखाती थी कि कैसे करना चाहिए। तो जैसे हम रोज बाबा को भोग लगाते हैं, भोग लगाते हैं ना, रोज बाबा को भोग लगाते हैं, भोग लगा के फिर हम भोजन स्वीकार करते हैं, तो क्या कहते हैं हम कि वो भोजन क्या बन जाता, प्रसाद बन जाता। उसी प्रकार यज्ञ सहयोग के लिए भी हमारी जो भी आमदनी है, हर मंथ के लिए हमारी आमदनी हमें प्राप्त होती है ना, तो वो आमदनी में से जब तक यज्ञ सहयोग नहीं निकाला तब तक वो मुझे यूज नहीं करना है, तो क्या बन जाएगा, वो पूरी आमदनी एक प्रसाद बन जाएगी। उसका सहज रूप से यथार्थ उपयोग ही होगा। तो चौथी निशानी ब्राह्मण की ये है कि वो हमेशा नियमित रूप से यज्ञ सहयोग करेगा, और जितना हम पक्के ब्राह्मण बनेंगे उतना ही हम क्या बनेंगे, क्या बनने वाले हैं, देवता बनने वाले हैं, है ना। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि हम सभी तो भविष्य के महाराजा महारानी हैं, सोने के महलों में रहने वाले हैं। इसलिए आप सभी सोने के महलों में रहने वाले देवताओं को नमस्कार। ओम शांति।
अब हमें और क्या चाहिए।